بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صلاة محمد على محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو شامل کر کے اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک گزارش اور ہے آپ سے, ہمارے دوست ہمارے بھائی حجت الاسلام المسلمین مولانا تصور حسین جوادی صاحب جن کا تعلق کشمیر سے ہے, مظفر آباد آزاد کشمیر میں آج ان پر اٹیک ہوا ان کی وائف کے ساتھ, اور وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی سخت زخمی ہیں, اس وقت آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہیں. دعا کریں بحق بیمار کربلا, بحق ذکر زہرا اور اولاد زہرا, اللہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دے, تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے. بہرحال دکھ تو ہر چیز کا ہے, اب تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک سانحے کا ذکر ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرا پیش آ جاتا ہے, دوسرے کا نہیں ہوتا تیسرا. دیکھیے انسان تو انسان ہے نا, یہ بات یاد رکھے گا, اہل بیت کا درس ہے, یاد رکھے گا کہ مسئلہ صرف شیعہ سنی کا نہیں ہے, مسئلہ انسانی جانوں کا ہے. وہ چاہے مال روڈ پہ بیچارے مارے جائیں, بے گناہ انسان ہے نا, انسانیت یاد رکھیے, انسانیت بڑی چیز ہے. یہی درس ہے اہل بیت کا, ان کا بھی درد محسوس کریں. یا وہ بیچارہ آج ڈرائیور دھماکے میں, وہ جو ججز پر حملہ ہوا پشاور میں, ججز بچ گئے زخمی ہو گئے, اللہ ان کو بھی صحت دے. ایک ڈرائیور جو مارا گیا, وہ بیچارہ وہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو غریب ڈرائیور تھا نا, اس کے پیچھے گھر میں کیا مسائل ہیں ہمیں کیا معلوم. ہم اپنے جب دیکھتے ہیں تو خود یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا گزرتی ہے ہمارے گھروں پہ. ایسی ہر ایک کے لیے ہے, انسانوں کا درد محسوس کریں گے. یقین کیجئے کہ اہل بیت بھی خوش ہوں گے, رسول بھی اللہ کا خوش ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا, کیونکہ مخلوق کی حیثیت سے تو سب انسان ہیں نا. ہاں ظالموں کے لیے محبت نہ رکھیے دل میں, ظالموں کی تو بربادی اور تباہی اور نیست و نابودی کی دعائیں کیجئے, کیونکہ انہی ظالموں کی وجہ سے تو یہ ظلم ہو رہا ہے نا کہ بے گناہ لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں کسی بھی مکتب کے ہوں, آخر انسان تو ہے نا. دیکھیں جو پولیس والے بیچارے مارے گئے وہ سب آخر ڈیوٹی پر تھے نا, انسان تو ہیں, ان کے بھی ماں بہن ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ بھی ان کے بھی بچے یتیم ہو گئے, سب ہوا کہ نہیں ہوا. یہ درس یاد رکھے گا اہل بیت کا, جو ہمیشہ میں دیتا ہوں میرے بعد اس وقت کی جب جنازے اٹھتے تھے اور ہنگامہ آرائی ہوتی تھی, لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے, کیونکہ میں اس وقت بھی سب کو روک رہا ہوتا تھا کہ نہیں, ہم کتنے ہی جنازے اٹھا لیں, دوسروں کی املاک کو یہ سب کرنا یہ مذہب تشیع ہے ہی نہیں نا, اہل بیت کی تربیت نہیں ہے, اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے. وہ اس پہ ناراض ہے, ہم ظلم تو اٹھا سکتے ہیں مگر ظالم نہیں بن سکتے, ظالم کا ہاتھ تو توڑ سکتے ہیں کیونکہ بزدل نہیں ہے, ظالم کا ہاتھ بھی توڑ سکتے ہیں کیونکہ بزدل نہیں ہے, لیکن کسی ایسے پر ظلم کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو بے گناہوں پہ نہیں, یہ مذہب اہل بیت اور مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے, کوئی میری بات کو مانے نہ مانے, جو مجھے بتانے کا حق تھا میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. لہذا ان سب کے لیے بھی دعا ہے, پروردگار وہ جو زخمی ہوئے دوسرے حادثات میں مولا ان کو بھی بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ دے, اور ہمارے ملک سے یہ جو ناسور ہے دہشت گردی کا یہ ختم ہو جائے, جڑ سے ختم ہو جائے, اور جہاں کہیں بھی ان کے سہولت کار اور سرپس چھپے معبود ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دے, اس ملک کو جیسے پہلے امن و امان کا گہوارہ تھا ویسے بنا دے, امن و آشتی سے رہتے تھے بزرگ جانتے ہیں, رواداری سے رہتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے ہم تو ایسے ہی رہتے تھے, ہم نے تو اپنا بچپنا بہت اچھا گزارا. ان بچوں پہ تو مجھے ترس آتا ہے کہ ان بچوں نے وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں کہ پورے محلے میں ایک ہمارا گھر تھا وہ ان کا, لیکن ہمیں کوئی پسلی نہیں تھا کیونکہ مجلس بھی ہوتی تو سارے بھائی آ کے ہمارے دوسرے بھائی آ کے انتظام کرتے تھے. تو کچھ تھوڑا سا سب کچھ دوسروں پر نہ ڈالا کیجئے, کچھ تھوڑا سا اپنا بھی محاسبے کی کوشش کیا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہوں जिसकी वजह से दीवारें खड़ी हो गई, खलीजें कायम हो गए, है ना। हाँ, जब तक इंसान अपने गरेबान में झांकना नहीं सीखेगा उसको मसले का हल कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही भटकता रहेगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए, ये तो वो दो चार मिनट जरूरी थे कि ऐसा मैं बड़ा अजीब सा आदमी हूँ, हसास आदमी हूँ, दिन में कुछ हुआ हो शहर में या मुल्क में और मैं उस पर ना बोलूँ, ये मेरे उसके खिलाफ है, तबीयत के खिलाफ है। वो ज़रूर मैं अपना इजहार करता हूँ चाहे जहाँ भी मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिन हालात में जी रहा हूँ उसे आँखें बंद फेर के और नज़रें फेर के थोड़ी आदमी जी सकता, नहीं जी सकता ना। अब आ जाइए अपने मौजू के पर आते, कल आपसे एक वादा किया था, आज उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह, एक तोहफा आपको देकर जाएंगे। सूरह अनआम की ये 149वीं आयत है ना जिसकी हम तिलावत कर रहे हैं, आपके सामने कल भी की और आज भी शरफ हासिल किया, सवाब हासिल किया, इसकी तिलावत का फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, बस अल्लाह के लिए। तुम्हारी सारी दलीलों को काटने के लिए एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तुम्हारी सारी दलीलों को काटने के लिए सबसे बड़ी दलील क्या है? अल्लाह की दलील है, फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, बस अल्लाह के लिए है वो दलील जो सारी दलीलों को काट दे। अल्लाह के लिए है वो दलील, सबसे बड़ी दलील किसके लिए है? अल्लाह के लिए। वो एक दलील नहीं हो सकती बल्कि सैकड़ों हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं, लाखों हो सकती हैं, यानी जिस मैदान में भी कोई अल्लाह के मुकाबले में कुछ लाने की कोशिश करेगा उस मैदान में हुज्जत बालिगा मौजूद होगी। यह है हुज्जत बालिगा का मतलब, किसी एक खास कलमे का नाम हुज्जत बालिगा नहीं है, बल्कि जहां जहां भी मुखालिफीन जो भी दलाइल पेश करें जो उनकी दलीलों को काट दे उसे कहते हैं हुज्जत बालिगा। वही क्या है हुज्जत बालिगा? ये कोई निशानी भी हो सकती है, फर्द भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, और अंबिया तो हैं ही, रसूल तो हैं ही, अइम्मा तो हैं ही, बाकी बातें हम आपके सामने भी तफसील से पेश करते चले जाएंगे। फलो शाह लहदाकुम अजमईन, और अगर अल्लाह चाहता तो इजबारी दौर पर तुम सबको हिदायत दे देता, मगर इजबारी तौर पे हिदायत देने से वो नतीजा तो नहीं निकलता ना, जो कल हमने अर्ज किया था। बस एक मिनट ले रहे हैं ताकि जो लोग कल नहीं थे उनको बात वाजे हो जाए कि अगर इजबारी तौर पे अल्लाह सबकी हिदायत कर देता तो जन्नत दोजख का फायदा क्या, वह नतीजा कैसे निकलता कि तुमने अच्छा काम अपनी मर्जी से किया है कि नहीं किया, वह तो जबरन किया है, बुरा काम तुमने अपनी मर्जी से किया या मजबूर थे करने पर। आप जानते ना कि बास गलत काम ऐसे हैं कि मजबूरी की हालत में अगर किए जाए तो अल्लाह माफ करता है कि नहीं करता, कि अगर जान बचाने के लिए, हालांकि झूठ बोलना गुनाहाने कबीरा में है कि नहीं है, है ना गुनाहाने कबीरा में, लेकिन जहां जब आ जाए तो अल्लाह जजा सजा को उठा लेता है। कैसे? कि भाई क्योंकि जबरन तुमसे झूठ बुलवाया जाए, जान बचाने के लिए अगर तुम झूठ बोल सकते हो तो बोलो, जान बचाने के लिए झूठ बोलना अल्लाह ने जायज करार दिया ना, तो अब देखिए जबर जहां पर आया वहां सजा खत्म हो गई। लिहाजा जबरन हिदायत नहीं की, तुम्हें इख्तियार दिया, अच्छे बुरे की तमीज दी, समझो, समझ के मजहब की तो इख्तियार करो, समझ के इस तरफ आओ। यही तो हुज्जत है जो हम तुम्हारे सामने पेश करेंगे कि अगर इनके मुकाबले में कुछ ला सकते हो तो वो ले आओ, वरना फिर इसको मान लो। ठीक है ना, ये मुकदमा आज की मजलिस का बहुत मुख्तसर सा, आगे तफसील में भी जाते हैं, लेकर जाएंगे आपको। अब कल मैंने जहां बात खत्म की थी एक हदीस आपकी खिदमत में पेश की थी, बल्कि तीन चार हदीसें पेश की थी, लेकिन आज उन सब की तफसील में जाते हैं कि इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व फातिमतु हुज्जतु अलैना। अब आज ये दोनों मजलिसें बीबी के लिए ही होंगी, कल भी बीबी के लिए थी लेकिन मुकद्दमा मुझे तफसीली बनाना पड़ा था ना, तो ताकि वहां तक पहुंचा दूं जो बयान करना चाह रहा हूं, अब वो बयान कर रहा हूं आपके सामने। फरमाया कि हम यानी गरोह अइम्मा तुम पर हुज्जत है तमाम इंसानों पर, मानो या ना मानो, जैसे कि अल्लाह सबका अल्लाह है, कोई माने या ना माने, मानने ना मानने से तो कुछ नहीं होता, वो अल्लाह है तो मानो या ना मानो, रसूल रहमतुल आलमीन है, आलमीन माने या ना माने, लोग रसूल माने या ना माने, तो है ना, तय हो गई बात कि किसी के मानने ना मानने से रखना पड़ता है, नहीं पड़ता। इसीलिए गदीर खुम में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था कि मानो या ना मानो, जिस जिसका मैं मौला हूं हर उसका ये अली मौला है। मानने ना मानने से फर्क थोड़ी होता, है, आपको जिद में आके तो इंसान ये भी कह सकता है मैं कह रहा हूँ भाई रात के 10 बजे, उसने कहा नहीं 12 बजे, क्योंकि आप 10 कह रहे हैं मैं 12 कहूंगा, तो भाई मानो या ना मानो बजे तो 10 ही है भाई। दिन का वक्त होता है, रात का होता है, दिन को रात कहने से दिन रात में नहीं बदल जाता, रात को दिन कहने से रात दिन में नहीं बदल जाती, ऐसे ही है ना। अब आइए बात को आगे बढ़ाएं, क्यों करवाया छठे इमाम ने कि हम तुम पर हुज्जत है, यानी तमाम मखलूकात पर हुज्जत और हम पर हुज्जत है फातिमा, आज इसकी दलीलें देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि बहक ना जाना, जब किसी के फजाइल बयान किए जाते हैं तो फिर वो उसके लिए लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचते चले, अच्छा ये से बड़ा ऐसे, फिर वो जाली मैसेजेस चलना शुरू होते हैं, झूठे मैसेजेस, जानते हैं ना कि अइम्मा के नाम से झूठ मंसूब करते हैं, लानत हो इनके ऊपर, क्योंकि जो इमाम के नाम से झूठ मंसूब करे उस पर अल्लाह की लानत है, नफरीन है, नफरीन, अल्लाह उन पर नफरीन करता है, जो मासूम के नाम से झूठ मंसूब करते हैं, अल्लाह के नाम से झूठ, रसूल के नाम से झूठ, इमाम के नाम से झूठ, ये जानते नहीं बदबخت लोग के कितना बुरा काम, आप जानते हैं क्या साजिश हो रही है, मेरे पास है, मैंने उसको सेव करके रखा हुआ है कि हमारे मिजाज के मुताबिक दुश्मन, हमारे दुश्मन भेष बदल के दाखिल हुए हैं हमारे अंदर, हमारे जैसे नाम रख लिए, इंटरनेट पे ऐसी किताबें हैं जिनकी किताबों का वजूद खारिज में है ही नहीं, ऐसे लोग ऐसे आलिम जो हमारे हैं ही नहीं, ये उन लोगों ने काम किया, उन्होंने छापे खाने बनाए, और अब जानते हैं आप बात कहाँ तक पहुँची, आप समझते थे बात खाली अलीउल्लाह तक है, आप बात समझते हैं खाली नुसैरियत तक है, नहीं भाई कहाँ तक बात पहुँची सुन लीजिए, मेरे पास मौजूद है, यकीनन आप में से भी कुछ को ज़रूर आया होगा, जब मुझे आया तो आपको भी आएगा, जनाब अब्बास के बारे में की रिवायत के इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दो के नाम से फरमाया, मैं चौंका कि क्या आया ये, अब उस जानते क्या हदीस लिखी है कि इमाम ने फरमाया कि अबुल फज़ल हज़रत अब्बास हमारे जो जद हैं ये तमाम फजाइल के खालिक हैं, अब सुनिए नहीं अभी पूरी सुनिए, यहां तक बात नहीं है, तमाम मखलूकात के फजाइल के खालिक हैं, तमाम अंबिया के फजाइल के खालिक हैं, और हम अइम्मा के तमाम फजाइल के खालिक हैं अब्बास। अब मासूमीन में कौन कौन आ गया, हम तमाम मासूमीन में जो फजाइल हैं उनके खालिक हैं कौन, अब्बास, लिहाजा तमाम फजीलतों के खालिक हैं अब्बास, इसलिए उनकी कुनियत है अबुल फजल, और नीचे वो पता नहीं कौन सा हवाला किताब का जिस किताब का दुनिया में वजूद नहीं, क्यों, वो शियों का मिजाज जानते हैं ना कि कितने खुश हो जाएंगे शिया पढ़ के, अच्छा अच्छा अब्बास ये बेड़ा गर्क कर दिया उसने तशय्यों का, यानी अभी तक तो अली अल्लाह की बात हो रही थी उसने अली का खालिक भी हजरत अब्बास को बना दिया, ये बदबख्तियां हो रही हैं हमारे यहां, ये हमारे साथ खेल हो रहे हैं, ये साजिशें हो रही हैं, और फिर जब हम जैसे लोग उन पर बात करते हैं बताते हैं कि बचो इन लोगों से, बचो इन लोगों से, ये तबाह करने के लिए घुसेड़े गए हैं, इनका हसब नसब भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कि पीछे से ये यानी अपने इस शजरे में शिया भी थे नहीं इनके लोग, जिनको आसमान पे सरों पे बिठा बिठा के तुमने रखा हुआ है, इनका अकब नहीं मालूम कि कहां से आए किधर से दाखिल हो गए हमारे यहां, क्यों बस अली अली करा रहे, खुदा के बंदो होश के नाखून लो, क्या किया जा रहा है तुम्हारे साथ, तबाह किया जा रहा है अकाइद को, क्योंकि मैं ऐसी रिवायत मुस्तनद पढ़ने जा रहा हूं, इसलिए ये बंद बांध रहा हूं कि इसका कहीं ये मतलब नहीं होता कि अगर मैं मौला के फजाइल बयान करना शुरू करूं तो माशाल्लाह इसका मतलब ये नहीं होता कि अली अल्लाह है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अली मोहम्मद से भी अफजल है, नहीं, याद रखना अपने बच्चों को यही अकीदा देना, वरना तबाह हो जाओगे कयामत के दिन, कि अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, अली सब कुछ है मगर मोहम्मद के बाद, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, कि अली सब कुछ है मगर मोहम्मद के बाद, ये तशय्यो का अकीदा है, इस अकीदे से चिमटे रहे, और कोई कुछ भी कहे उसको जवाब दे देना कि ये सब साजिश है, हमारा अकीदा यही है, जबी तो कलमे में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर अली वलीउल्लाह है ना भाई, ऐसे ही है ना तरतीब, सदियों से यही तरतीब है या कोई और तरतीब है, अब आके जवानों को बच्चों को तबाह किया जाए बर्बाद किया जाए, अब आइए जो रिवायत पेश करने जा रहा हूं बिल्कुल इसी तरह, अभी मैं बताऊंगा मकामे फातिमा क्या है आज भी और कल भी आपको, तो आप हैरत के समंदर में गर्क हो जाएंगे, मगर इस सब के बावजूद फातिमा के सर के ताज का नाम है अली। समझ गए? जो फातिमा को भी रौनक देता है दुख्त रसूल को, उसका नाम है अली। सैयदुल औलिया है अली, मासूमीन में मोहम्मद के बाद है अली। ठीक है ना? अब आइए पांच इमाम तारुफ करा रहे हैं अपनी जद्दे ताहिरा का। अल कतरा बड़ी मशहूर किताब है आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तबित की, और उन्होंने फिर उसमें पूरा निचोड़ जमा किया, उसको कतरा नाम रखा है। दो जिल्दें हैं बड़ी मोटी मोटी अरबी में, उर्दू में तर्जुमा नहीं होता ऐसी किताबों का, क्योंकि फिर वो लोग सही लाइन पे चल पड़ेंगे, लेकिन फारसी में तर्जुमा हो चुका उनका। दोनों बड़ी बड़ी मोटी जिल्दें हैं और कतरा नाम रखा है, और फारसी में उसका तर्जुमा किताब का क्या है, कतरे अस दरियाए फजाइल अहले बैत, अहले बैत के फजाइल के समंदर में से एक कतरा। और वो किताब ऐसी मारिकतुल आरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि अगर उस किताब को आदमी दो किताब जिल्दों को अपने पास रखे, साल में 365 दिन मासूमीन के फजाइल पढ़ता रहे, मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, इतना यकीन है मुझे कि 365 दिन तकरार नहीं करेगा, तकरार नहीं करेगा। इतने फजाइल हैं उसमें अहले बैत के कि 365 दिन अगर मजलिस से पढ़े उस किताब से तो एक मजलिस दोबारा नहीं पढ़ेगा, इतने फजाइल हैं उसमें। लेकिन पढ़े जब ना, यहां तो पढ़ते हैं नहीं, पढ़े रहते, इधर की सुनी आ गए, उधर की सुनी आ गए, इधर से जोड़ा उधर से जोड़ा, इसका सुना उसका सुना, कुछ अपने दिमाग से लगाया, चल भाई मजलिस तैयार हो गई। ऐसे नहीं होता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। ये क्यों बना रहा हूं कि जो हदिया देने जा रहा हूं आपको सुनिए। फरमाते हैं पांच इमाम अपनी जद्दे ताहिरा के बारे में, इन्नमा सम्माहा फातिमत जहरा लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल खलकहा मिन नूर अज़मते। हमारी जद्दे ताहिरा का नाम फातिमा जहरा इसलिए रखा गया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी अजमत के नूर से फातिमा को खल्क किया, अपनी अजमत के खलकहा मिन नूर अजमते। पांचवें नाम फरमा दे, मुस्तनद तरीन रिवायत बता रहा हूं आपको, मुस्तनद तरीन, क्यों, इसमें खुद बसायरु दरजात का हवाला है, इललु शराय का हवाला है, बहरुल अनवार का हवाला है इस कतरा में, और फिर बसायरु दरजात जब उठाएंगे तो उसमें 10 हवाले हैं, इललु शराय के हवाले मासूम तक जाके मिल जाते हैं शेख सदूक के, और उसे शेख कुलैनी और शेख सदूक तक जाके मिलेगा सिलसिला, शेख मुफीद तक मिलेगा, और बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी नकल कर रहे हैं तो नीचे सारे हवाले, ऐसे नहीं कि बीच में से छुना के चले गए अपनी तरफ से बना के, जैसे मैंने भी मिसाल दी अपनी तरफ से गड़ी एक रिवायत पढ़ा के चल के फला किताब में है भाई, किसी में होगा। अब आप कौन सा जाके किताबें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जाके किताबें, कौन देख रहा है किताबें, कोई नहीं देख रहा किताबें। लिहाजा इसलिए मैं ये हवाले दे रहा हूँ, ये बिहारुल अनवार तो मौजूद है ना किताब खानों में, बसायरु दरजात भी मौजूद है, इललु शराय भी मौजूद है, और उर्दू तर्जुमे हैं दो किताबों के तो हो गए, बिहार की चंद जिल्दों के भी हो गए, इललु शराय के भी हो गए, फिर उसमें अलग हवाले दिए हुए हैं उन्हीं ने कि वो कहाँ से लिया, उसने कहाँ से लिया, उसने कहाँ से लिया, ये खुद एक इल्मे हदीस इल्मे रिजाल अपनी जगह एक इल्मे खैर। इन्नमा सम्माह फातिमत ज़हरा लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल खलकहा मिन नूर अज़मतिही। बस हमारी जद्दे ताहिरा का नाम फातिमा जहरा इसलिए रखा गया कि बेशक अल्लाह ने उन्हें अपने अजमत के नूर से खल्क किया, और जब ये नूर खल्क हो गया तो जो भी कायनात में जो कुछ भी था वो खीरा हो गया, एक नूर चमका ना, उनकी नजरें खीरा हो गई, जो भी मखलूकात थी, मलाइका थे, जो भी थे, वो एकदम अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि माबूद ये नूर कैसा है, ये नूर कैसा है। तो अब जो जवाब मिला मशियत की तरफ से वो सुनिए, ये मासूम की हदीस पढ़ रहा हूं पूरी, पांचवें इमाम की। पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जवाब मिला इन मखलूकात को, हाजा नूर मिन नूरी वस्कनतुहु फी समाई व खलक्तुहु मिन अजमती व उखरजहु मिन सुलब नबी मिन अंबियाई व फज़लहु अला जमील अंबिया وَأُخْرِجُوا مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِي وَيَقُومُونَ بِأَمْرِي وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي فَاجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِي۔ یہ پوری حدیث، اب ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں آج کی مجلس میں آپ کے لیے۔ مشیت نے جواب دیا ان مخلوقات کو کہ هذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے، یہ نور جس نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا، یہ نور جس نے مخلوقات کو خیرہ کر دیا، یہ نور میرے نور میں سے، ہاذا نور من نوری، ابھی نور پہ بھی بات کروں گا، اطمینان رکھیے آپ، ایسے نہیں چھوڑ کے جاؤں گا آپ کو کہ آپ سب کو نور کا بھی معنی بتاؤں گا، ورنہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں تشریح کروں گا آپ کے سامنے. ہذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے. واسطم تو بھی سمائی، اس نور کو میں نے اپنے آسمانوں میں مسکن دیا، یعنی آسمانوں میں اس کا مسکن قرار دیا. مسکن تو سمجھتے ہیں نا، رہنے کی جگہ، لیکن اچھا لفظ یہی ہے مسکن. معصوم کے لیے اس سے اچھا لفظ میں کہاں سے لاؤں، گھر ور کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگا یہاں پہ اس مقام پہ. اور جگہوں پہ کہا جاتا ہے، گھرانہ بھی کہا جاتا ہے، بیت بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس جگہ پہ مسکن بہترین. واسکن تو ہوں فی سمائی، اور میں نے اس نور کا مسکن قرار دیا اپنے آسمانوں میں. وخلقتہ من عظمتی، اس نور کو میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا. میں نے آخری مجلس جب آل ابا میں پڑھی تھی، اس حدیث میں ختم کی تھی، مگر تشریح نہیں کر سکا تھا. آج پوری مجلس اسی میں تشریح کروں گا، کیونکہ وہاں میں نے وعدہ کیا تھا. بے شک وہاں وہ افراد نہیں تھے جو یہاں ہیں، وہاں کے دو تین افراد ہیں، مگر میری مجبوری تھی، وہاں بھی وقت کی کمی رہ گئی نا. لیکن آج میں پوری مجلس اسی پر پڑھوں گا، اس حدیث کی جب تشریح کروں گا. ابھی کھولتا ہوں آپ کے سامنے اس کے مطالب کو. بس میں نے اس کو اپنی عظمت سے خلق کیا. واخرجہ من صلب نبی من انبیائی، اور میں نے اس نور کو ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے. اب یہ صلب پر بھی بات ہوگی ابھی آپ سے. میں نے اس نور کو ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے، اس کو ظاہر کیا. وَفَزَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور جس نبی کے صلب میں میں نے یہ نور قرار دیا، اسے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی. یہ ہے فاطمہ، آج پانی نہیں رکھا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی چلیے آگے. واپس چلو جمی لمبیا، جس صلب نبی میں نے یہ نور قرار دیا، اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی. وہ خرج من ذالک النور قوم، اور اس کے امتن، قوم نے امتن، خرج من ذالک النور امتن، اپنے اس نور سے یعنی نور فاطمہ سے ایک امت کو ظاہر کیا. اس نور فاطمہ سے ایک گروہ کو، ایک قوم کو ظاہر کیا. وخرج من ذالک النور امتن، ایک امت کو، ایک گروہ کو اس نور سے میں نے ظاہر کیا. اب سمجھ میں آیا، یہ آج دلیل دے رہا ہوں آپ کو. وہ جو بات کرتے ہیں نا، دعائے زہرا، دعائے زہرا ہیں ہم لوگ، میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ دعائے زہرا کہاں سے ہو. سمجھ میں آیا، سمجھ میں آئی بات. وَأُخْرِجَ مِنْ ذَلِكَ النُّورَ أُمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي، لیکن وہ گروہ جو اس نور سے میں ظاہر کروں گا. یہاں امت کے دو معنی، دو تشریح کی علماء نے، ایک تمام چاہنے والے، یہ شیعان حیدر کرار، شیعان علی سب. اور کہیں پر کہا گیا کہ نہیں، یہاں اس گروہ سے مراد ہے ائمہ طاہرین، کہ اس نور سے میں ان اماموں کو، نور کو نکالوں. تو بات ایک ہی ہے، گھبرائیے گا مت. یعنی جو اماموں کا ساتھ دے گا وہ بھی اس کا حصہ قرار پائے گا. امت کا لفظ ہے، امت کا لفظ، کہ اس نور سے ایک گروہ کو، ایک امت کو، ایک قوم کو ظاہر کروں گا. پہچان کیا ہوگی، وہ اپنی زبان سے کہیں گے مان لینا، نہیں شناخت بتائی. شناخت وہ کیسی امت ہوگی جو اس نور سے ظاہر ہوگی. یعنی یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو معصوم نے احادیث سے، اپنے احادیث کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے بیان فرمان کے ذریعے سے بتایا کہ تم فاطمہ کے نور سے خلق کیے گئے ہو. اب یہ نور، گھبرائیے گا مت، ابھی تشریح کروں گا نور کی آپ کے سامنے، مت پریشان ہو جائے گا اس ایک لفظ سے میرے، کہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا، تو میں تمام قیود و بند ساتھ لگا کے پڑھتا ہوں، ورنہ اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا. ایک جملہ کلپ کا نکالا، چل بھائی تماشا بن گیا پوری دنیا میں. आगे वाली तशरीह भूल गए, वो जो एक जुमला था वो ले लिया, ये कहा है मौलाना ने, ये देखो भाई 20 सेकंड की क्लिप चल रही है, वो जो दो घंटे तक बेचारा बोलता रहा वो गायब। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये बड़े चक्कर होते हैं, मेरे साथ ही बड़े हुए, मैं खुद देख के हैरान हो रहा हूँ। वाकई मैंने कह दिया, अब जब पूरी तकरीर सुनी तो मैंने किसी और माना में कहा था, आगे उसकी तशरीह भी की है, वो तो सब गायब है, एक जुमला लगा हुआ है। ये देखेंगे, ये भी अजीब बात है कि नहीं? खैर, अल्लाह इन सबको हिदायत दे। ये सोशल मीडिया ने आजकल एक अजीब मुसीबत अजाब में मुब्तला कर दिया है, आसाबी मरीज बना दिया है लोगों को। सुबह से जो शुरू होते हैं सारे, इनको नहीं एहसास होता कि कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं, एक दूसरे पर तोहमतें लगाना, झूठ बांधना, सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे। अल्लाह रहम करे सबके हालात पे। खैर जनाब, बस इस उम्मत को जाहिर करूंगा इस नूर से। सिफत क्या होगी? यकुमूना बे अमरी, ये मेरे अमर के लिए कयाम करेंगे। पहली सिफत क्या है? अल्लाह के दीन के लिए कयाम करेंगे और कयामत तक कयाम करेंगे। और ये भी तारीख खुद बता देगी कि उस वक्त से लेकर आज तक अगर बातिल ताकतों के सामने कोई डटा है तो वही डटा है जिनका रिश्ता औलाद फातिमा के साथ है। अरे बाबा, आज भी कौन डटा हुआ है यजीदियत के मुकाबले में? आज भी कौन साम्राज्य ताकतों के मुकाबले में उनके दांत तोड़ रहा है, खट्टे नहीं कर रहा, उनके दांत तोड़ रहा है, उनकी आंखें फोड़ रहा है, सामने मर्दों की तरह डटे हुए हैं। दुनिया को झुका सकते हो, अली वालों को नहीं। ऐसे ही हुआ ना, हो रहा है ना हर जगह। तो क्या है? यकुमूना बे अमरी, निशानी बता दी कि ये वो कौम होगी जो नूर फातिमा से मैं जाहिर करूंगा। इनकी पहचान ये होगी कि हर जमाने में मेरे लिए कयाम करेंगे, यानी अल्लाह के दीन के लिए कयाम करेंगे। वयहदूना इलैया खल्की, और इसकी दूसरी पहचान ये होगी कि ये लोगों को मेरी तरफ हिदायत करेंगे, यानी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। बस अल्लाह के अलावा अगर किसी और की तरफ बुलाता नजर आ जाए तो समझ लो फातिमा वाला नहीं है। लोगों की हिदायत करेंगे मेरी तरफ। और कुरान मजीद से दलील दे दूं, वजअल्लाहुम्मा, और जिन्हें हमने इमाम बनाया है वो लोगों को हमारी तरफ बुलाते हैं। जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया वो किसकी तरफ बुलाते हैं? रसूल किसकी तरफ बुला रहे हैं लोगों को? अली किसकी तरफ बुला रहे हैं लोगों को? हसन किसकी तरफ बुला रहे हैं लोगों को? हुसैन किसकी तरफ बुला रहे हैं लोगों को? ज़ैनुल आबिदीन किसकी तरफ बुला रहे हैं लोगों को? मोहम्मद बाकर किस तरह बुला रहे हैं? अलैहिम सलाम अजमईन, एक बार सलावात भेज दीजिए सबके लिए। किधर बुला रहे हैं? तो कुरान ने भी यही कहा ना, कुरान में भी यही फरमाया ना, सूरह अंबिया की आयत है ना, ये 72वीं या 73वीं आयत है, बहरहाल देख लीजिएगा। तो अचानक बस जहन में आ गई मेरे, वजअल्लाहु अइमतन यहदूना बिअम्रिना वअहैना इलैहिम फिअल खैरात। ये सूरह अंबिया की 72वीं या 73वीं आयत है। हमने इन्हें इमाम बनाया है, वहां उसमें अंबिया भी शामिल है, याद रखिएगा। इस लफ्ज अइमा में यहां पर इमाम भी और नबी दोनों, कि हम जिन्हें बनाते हैं उनकी पहचान क्या है? अब आयत से भी दलील आ गई ना, आयत भी रिवायत भी। अब भी कोई अकल का अंधा इसके खिलाफ चले तो अपनी अकल का मातम करे, हमें कुछ ना कहे। हमने आयत रिवायत दिरायत सब बता दी ना, आयत भी बता दी आपको कि इनका काम क्या है, अल्लाह की तरफ हिदायत करते हैं। कुरान कह रहा है वजअल्लाहु अइमतन यहदूना बिअम्रिना, हमने जिन्हें इमाम बनाया वो हिदायत करते हैं हमारी तरफ, लोगों को बुलाते हैं हमारी इबादत की तरफ, और रिवायत भी मैंने पेश कर दी आपके सामने, रिवायत पेश कर दी ना, उम्मतन उखरजो मिन ज़ालिका नूर उम्मतन यहदूना बिअम्रिना व यक़ूमूना बिअम्री, क़याम करेंगे मेरे अमर के लिए, हिदायत करेंगे मेरी तरफ, खल्क की मेरी मखलूक की हिदायत करेंगे मेरी तरफ। ये रिवायत और दिरायत किसकी तरफ बुला के रहे इमाम रसूल ने, किसके ये दिरायत यानी वाकया, किसके लिए जिद्दोजहद की, किसके लिए कुर्बानियां दी, किसके लिए करबला बनाई, किसके लिए सब कुछ कुर्बान किया, किसके लिए औलादें कुर्बान की। तू राजी रहना चाहिए, घर लुटता है लुट जाए, सर कटते हैं कट जाए, घर जलते हैं जल जाए, तू राजी होना चाहिए। रिजन बे कजा आई तस्लीम ले अमरे, इससे बड़ी कोई दिरायत हो सकती है? तो आयत रिवायत दिरायत जब तीनों चीजें आ गई, इसके बाद भी अगर किसी अकल के मारे को समझ में नहीं आए या नहीं जानता, सब कुछ है ऑन ड्यूटी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जानता तो है मगर क्या करे, ड्यूटी लगी हुई है, जान के कर रहा है। क्या पहले लोग जानते नहीं थे? रसूल के जमाने में जानते नहीं थे? जानते थे ना मगर ड्यूटी पर थे, करना है। सूरह मुनाफिकून ने क्या ऐलान करके बताया, बताया कि नहीं बताया? इतना इशारा काफी है कि हाँ भाई थे, उस वक्त भी थे, जानते थे, फिर भी तो आज भी ऐसे हैं कि सब पता है, मगर मसला यह है कि जहां से पोस्टिंग मिली है उसका भी तो हक अदा करना है ना, बल्कि उसी का हक अदा करना है ना। जहां से माल लगाया गया है, जहां से ड्यूटी लगा के भेजा गया है कि बाहर से तो नहीं मारा जा सका इनको, हजारों शहीद कर दिए मगर ये अपनी जगह कायम है, अंदर तोड़फोड़ करो, नजरियाती तौर पे, अकीदती तौर पे, ना मालूम क्या क्या मसाइल खड़े कर दिए आपके दिनों, आप भी उलझने को तैयार रहते हैं। बाबू पहचानो वक्त को, समझो ये वक्त है इन मसाइल में पढ़ने का। दुनिया कहां से कहां जा रही है, कहां वो मोमिन पूरी दुनिया की जालिम सफाक ताकतों से बरसरे पैकार है, यार इमाम बारगाह में, यार मोहल्ले में पता नहीं क्या मसले चल रहे, ये कर लो तो वो नहीं करो, ये पढ़ लो तो वो नहीं पढ़ो, यूं करो क्या क्या मसला हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? सीधी सीधी सी बात है, यहदूना इलैया खल्क, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अपनी तरफ थोड़ी बुलाएंगे कि मेरी पूजा करो। ये अलग बात है कि हल जजा उल एहसान इल्ला एहसान, कि ये अल्लाह ने उनको मनसब दिया है कि इनके बगैर इबादत की तो तुम्हारी इबादतें भी मुंह पे मार दूंगा, ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि नमाज में दुरूद को शामिल करके वाजिब करके कितनी ही मुखालिफत कर लो अहले बैत की, जरा नमाज तो पढ़ के बता दो दुरूद के बगैर, या दुरूद को अपनी मर्जी से बढ़ाकर तो बता दो नमाज में, नमाज में भी उतने ही दुरूद पढ़ोगे, उसके लाहिके और साबिके नहीं लगाओगे साथ में, क्यों? जानते हो कि कुछ और शामिल किया नमाज गई है ना, ऐसे ही है ना मेरे भाई, ऐसी है ना। तो दुरूद में सब आ गए नहीं आ गए, अब कोई माने या ना माने, मगर आप तो जानते हो कि दुरूद में 14 मासूमीन हैं। मैं पहले कह चुका किसी के मानने ना मानने के ठेकेदार हम थोड़ी हैं, जिम्मेदार थोड़ी हैं। तो 14 मासूम आ गए कि नहीं आ गए? तो जब 14 मासूम पे दुरूद हो गया, इबादत में शामिल हो गए, तो फिर उसके बाद अपनी अक्ल के गद्दे लड़ाना, ये दामिल करो, ये निकालो, ये डालो, अरे क्या बात है, ये क्या कह दिया मौलवी ने, अली का जिक्र करने से नमाज बातिल। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के जिक्र करने से नमाजें बातिल होती हैं, तुम अली के जिक्र की बात कर रहे हो। अभी बता देता हूं आपको, सूरह तौहीद कौन सा एक मासूम बच्चा बैठा है उसको भी याद होगी, अभी कहूं सूरह कुल हुवल्लाह वहां सुना दो, सबसे छोटा बच्चा भी खड़ा होकर सुना देगा, मौलवी साहब ये लीजिए सुन लीजिए, ऐसे ही है ना। सूरह तौहीद नाम है, सूरह इखलास नाम है, यानी उसका नाम ही सूरह तौहीद है, कितना इसका पढ़ने का सवाब होगा। चलिए पहली रकात में आपने जो भी रकात जो भी सूरह पढ़ लिया, दूसरी रकात में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या पढ़ते हैं आप, ये पढ़ते हैं ना सूरह तौहीद, तो अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। सूरह तौहीद क्या है? अल्लाह की तौहीद, ऐसे ही है ना। 10 बार पढ़ूंगा मैं,
क्या
कहना ये जो वाजिब नमाज है, मौलवी साहब ने कहा एक बार पढ़ना, मैं कह रहा हूं मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान 10 बार करूंगा। वो भाई खुदा के बंदे नमाज बातिल हो रही है, कैसे आदमी हो? मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, नमाज कैसे बातिल हो जाएगी? अरे वो कुरान पढ़ने से नमाज बातिल हो जाएगी? अरे सूरह फातिहा तू एक की जगह दो बार पढ़ देगा तो नमाज बातिल हो जाएगी? खुदा के बंदे क्या कर रहा है? हाँ वो मखसूस अमाल की नमाजें अलग है, शबे कद्र की अलग है, शबे बरात की अलग, उनकी बात नहीं कर रहा, पंच वक्ता नमाजों की बात कर रहा हूँ। अरे सूरह तौहीद ही तो पढ़ना हो तो 10 बार पढ़ सकता हूँ, चलो 5 बार पढ़ने दो मौलवी साहब। अच्छा चलो नहीं मानते 2 बार तो पढ़ने दो भाई, अल्लाह की तौहीद का ही तो ऐलान कर रहा हूं ना, हो जाएगी नमाज। तो जब भेजा मकाम पर अल्लाह को अपने जिक्र गवारा नहीं कि मैंने कहा 1 बार पढ़ो, तुम 2 बार पढ़ोगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो जिस मकाम पे पढ़ने की इजाजत है दुआए कुनूत में, इमाम जमाना का नाम लो, अली का नाम लो, हसन का नाम लो, अरे अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, कोई रोका है किसी ने? हर जिक्र का एक मकाम हुआ करता है। उससे हटा के अल्लाह का जिक्र भी करोगे तो अल्लाह को गवारा नहीं है, जाओ ले जाओ अपनी नमाजें, नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा था वैसे क्यों नहीं पढ़े? सुबह की 2 रकातें नहीं मौलवी साहब, 2 रकात की आवाज़ें, मैं तो सुबह की 10 पढ़ूंगा, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। फजर की 10 पढ़ लेगा भाई? भाई उसने 2 ही वाजिब की, 2 ही पढ़ना है, 4 है जोहर की, नहीं मैं तो 8 पढ़ूंगा। मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत करूं। हाँ भाई तो नवाफिल 100 रकात पढ़ता रहे, किसने रोका? किसने रोका? नहीं रोका, पढ़ते रहो। लेकिन वाजिब जो कर दी गई 4, उसको 5 कर सकता है कोई? उसको 6 कर सकता है कोई? तो खुदा के बंदो 2 और 2 4 की बात है, फिर लोग आए और तुम्हें बहका के चले जाए और खुश करके चले जाए, उनका भी काम हो जाए तुम्हारा भी काम हो जाए। उनका भी काम हो गया ना, जो वो चाहते थे उन्हें मिल गया, उनका भी भाव लग गया, और आप जो चाहते थे आपको मिल गया कि चलो यार जान छुटी नमाज वमाज से भाई, और पढ़नी होगी तो अपनी मर्जी की पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। पढ़नी है अव्वल तो पढ़नी नहीं, और पढ़ेंगे तो अपनी मर्जी की पढ़ेंगे, जाओ तुम कौन होते हो? ऐसी भी एक तकरीर मैंने सुनी जिसमें कहा कि अव्वल तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की, वैसी तुम जन्नत में चले जाओगे, लेकिन अगर पढ़ो। अच्छा ये अव्वल तो वाली बात क्यों की? क्योंकि खुद फंस गया था, खुद ही नहीं पढ़ता था, जो यहां पे बैठ के ऐसी बस जबानी अब करने लगे, ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो मिंबर के लिए करी हैं, मकरू हैं, इस मिंबर के अदब के खिलाफ हैं कि इस मिंबर से ऐसी जबान इस्तेमाल की जाए, माज़ अल्लाह मैं तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कहीं नहीं पढ़ता तो फलाना है तो वो फलाना है तो वो फलाना है। ये मिंबर की जबान है, मिंबर खतीब खतीब मिंबर सलूनी का जो मिंबर है उसकी जबान है ये इसलिए मिंबर दिया गया कि यहाँ से बदतमीज़ बनाओ, यहाँ से वो लहजा वो अल्फाज वो जबान इस्तेमाल करो जो बच्चों को ख़राब कर दे, हमारे हमारी माँ बहनें बेटियाँ सुन रही हैं बैठी हुई, और ऐसी जबान इस्तेमाल की जाए मिंबर से और लोग खुश हो रहे हैं साहब, लोग खुश हो रहे हैं, तो वो पढ़ा है वो लोग खुश हो रहे हैं, क्या मतलब है? ऐसे छोड़ दिया जाए बस बेबंदो बार, जिसकी जो मर्जी किया जाए कोई ना बोले? तो ऐसा तो सौदा नहीं किया हमने किसी से, ना जबान का सौदा किया है, ना ज़मीर का सौदा किया है, ना दीन का सौदा किया है। वो पढ़वाना है पढ़वाओ, नहीं पढ़वाना नहीं पढ़वाओ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि इस खून में इस रगों में इमाम सादिक का नमक खून बन के दौड़ रहा है। हमने भी तो उनकी खाई है ना, बात इतनी है, हम भी जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, तुम भी जिनकी खाते हो उनकी गाते हो। हम तो फख्र से कहते हैं कि अपने बच्चों को हुसैन के तबर्रुक पे पाला है, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हुसैन के तबर्रुक पे अपने बच्चों को पाला हो और हुसैन के मिंबर से खयानत करूं, हुसैन के मिंबर पे बैठ के हुसैनियों के बच्चों को बहकाऊं, हुसैनियों के जवानों को बहकाऊं? ऐसा नहीं होता। जो जानता है कि नमक का हक क्या है, इमाम सादिक के मकतब का नमक खाया है तो उसका हक अदा करना भी जानते हैं। अगर तुम्हें 2-2 गज की जबानें दी हैं जो तुम शैतानी ताकतों के लिए इस्तेमाल करते हो, हमें इंतशार पैदा करने के लिए हमारे अंदर अपनी जबानें इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम जैसे गुलाम भी मौजूद हैं। اور نہ معلوم کتنے موجود ہیں ساری دنیا میں ان انتشار پھیلانے والوں کو جواب دینے کے لیے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرار دیا کہ یہ فاطمہ کے نور سے بنے. فاطمہ کا نور اللہ کی عظمت کا نور. وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ نُورِ أُمَّتًا, اور اس فاطمہ کے نور سے گروہ کو پیدا کروں گا. يَقُومُونَ بِأَمْرِ, قیامت تک وہ میرے امر کے لیے, میرے دین کے لیے قیام کرے گی وہ امت, وہ گروہ, وہ جماعت. وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي, اور یہ گروہ, یہ جماعت جو نور فاطمہ سے جس کو میں ظاہر کروں گا, نسبت نور فاطمہ کی طرف اس کی ہوگی, یہ میری مخلوق کو میری طرف ہدایت کرے گی. وَجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ بھی اللہ کا وعدہ قرآن میں بھی ہے, آیت بھی ہے, روایت بھی ہے, درایت بھی ہے. وَجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی امت کو, اسی گروہ کو جس کی نسبت نور فاطمہ سے ہے, اسی کو روئے زمین پہ اپنا وارث بناؤں. وَجْعَلْهُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ, اپنی زمین پر اس گروہ کو اپنا خلیفہ بناؤں گا, وارث بناؤں گا, جانشین بناؤں گا, تمکن دوں گا, قدرت دوں گا, اقتدار دوں گا. ایک جگہ تھوڑی فرمایا, کتنی جگہ قرآن مجید نے فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم. اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے, یہ قرآن ہے بھائی, اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں, اعمال صالح بجا لاتے ہیں, کہ ضرور بھی ضرور روئے زمین پر تمہیں اپنا وارث بناؤں گا. صرف وارث نہیں بناؤں گا, بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم, اپنے ان مومن بندوں کو زمین پر اقتدار دوں گا, طاقت دوں گا اپنے پسندیدہ دین کے ساتھ, اپنے پسندیدہ دین. اب آثار نظر آ رہے ہیں نا, اب آثار ظاہر ہو رہے ہیں نا, کہ پوری دنیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جمع ہو گئی جنہیں مٹانے کے لیے. ابھی تو وہ آیا بھی نہیں جو حقیقی سپہ سالار ہے, ابھی تو اس کے غلاموں سے ہی تم نہیں لڑ پا رہے ہو. جب وہ آئے گا تب کیا ہوگا؟ دیکھ رہی ہے نا دنیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا نا, دیکھ بھی رہے نا کیا ہو رہا ہے. سب جگہ دندناتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے آگے آگے, اور پوری دنیا میں دہشت ان کی بٹھا دی گئی تھی, ایسے ایسے ویسے. اب داڑیاں منڈوا کے پینٹ قمیص پہن کے بھاگ رہے موسل سے. کہاں گیا, کہاں, کیوں؟ اب تک پالا پڑا تھا 39 دن والوں سے. اب کیا کرو, اب جملہ آ گیا تو روک تھوڑی سکتا. اب تک پالا پڑا تھا, یہی سمجھے تھے مربو انتر. ہاں یہ جو آیا ہے یہ بھی, یہ جو 39 دن تک جو آتے رہے جاتے رہے یہ بھی چلا جائے گا. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ 40ویں دن والا اور ہے, 39 دن والے اور تھے. یہاں بھی یہی ہوا, یہاں بھی یہی ہوا. اس ملک کو کھایا, اس کو کھایا, اس کو کھایا, اس کو کھایا, دندن آتے بڑھتے چلے جا رہے تھے مست ہاتھیوں کی طرح, اب رہا کہ لشکر کی طرح. اب جب سامنا ہوا ابو طالب والوں سے, تب انہیں پتا چلا کہ 39 دن کی کہانی کیا تھی اور 40ویں دن کی کہانی کیا ہے. اب جن سے مقابلہ ہے وہ 40ویں دن والے ہیں, حل کرتا چلوں آپ کا. سونے تو میں نہیں دیتا, بے فکر رہیے آپ, چاہے جمعیاں لیجئے چاہے کچھ کر لیجئے, سونے نہیں دوں گا آپ. بلند آواز سے صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم, ٹھیک ہے؟ اب آئیے, یہ نور کیا نور ہے؟ اب اشتباہ رہ جائے گا نا, ایک شبہ پیدا ہو جائے گا نا, یہ کیا کہا آپ نے, کہ میں نے اپنے نور سے یہ خلق کیا اور ان کے نور سے اس کو خلق کیا, آئیے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دیں. آج کیا ہے نور فاطمہ؟ قرآن مجید میں ویسے بہت آیات ہیں لیکن معروف آیت جو ہے آئے سورہ نور میں, اللہ نور السماوات والارض, ایسے ہی ہے نا, اللہ آسمان و زمین کا. کیا مطلب آسمان و زمین کا نور ہے؟ یعنی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور, یعنی ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے. ہر شے یعنی جہاں سے پہچاننا چاہو اللہ کو پہچان لو گے, نہ پہچاننا چاہو تو جتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں گی نہیں پہچانو گے. پہچاننا چاہو گے تو ایک کوپل سے پہچان لو گے اللہ کو, یہ جو کلی جو صبح پھوٹتی ہے صبح کے وقت, اسے پہچانو گے کوئی ہے, کوئی ہے کہ میں نے تو گٹھلی بوئی تھی, یہ کیا یہ درخت بن گیا پھلدار, کیا ہوا, کہاں سے یہ تنا آیا, زمین تو پھر اتنی کی اتنی, یہ نکل کے کہاں سے پھیل کے اتنا بڑا ہوتا چلا گیا, کیا ہوا, کیا چیز. اور نیچے سے نکالتے ہیں جڑیں, یہ جڑیں آپ نے ڈالی تھی, یہ جو زمین کھود کے آپ اس کی جڑیں نکالتے ہیں, بڑے بڑے درختوں کے تنے نیچے سے نکالتے ہیں, آپ نے ڈالا تھا, باہر سے تو نہیں گیا نا, وہی جو گٹھلی یا بیج جو تھا وہی پھوٹا ہے نا اندر, تو وہ کون سی چیز ہے جو لکڑی میں تبدیل ہوئی ہے, کون سی, آپ نے تو نہیں ڈالی. یعنی ارتقا ہے نا, ارتقا, ارتقا یعنی زرخیز زمین ہو تو اس کی پہچان کیا ہے, زرخیز زمین ارتقا, ترقی پیدا کرتی ہے اپنے آدمی. یعنی کیا ترقی پیدا کرے گی, وہی مٹی لکڑی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. بنجر زمین ہو آپ خود اپنی طرف سے بھی تنا ڈال دیجئے, کچھ بھی نہیں ہوگا, پیدا ہوگا کہ وہ وہی کا وہی رہے گا, لیکن زمین بنجر اور زمین زرخیز ہو تو وہ جو نیچے جڑیں بن رہی ہیں آپ نے تھوڑی ڈالی ہیں, اور زمین بھی اتنی ہے, اتنی ہی ہے نا, تو بس وہی ارتقائی مرحلے طے کریں نا, کہ مٹی نے ارتقائی منزل طے کی تو شجر حجر میں بن گیا, شجر میں تبدیل ہو گئی, بن گئی نا شجر میں. اچھا جو پتھروں کے جو کانے عقیق وقیق یہ وہ سارے گونگے مونگے فیروزے یہ جو سب نکلتے ہیں, یہ کیا باہر سے ڈالے گئے پہاڑوں کے اندر؟ نہیں نا, یہ وہی ارتقائی سفر ہے نا, کہ جو قیمتی پتھر ہے اس پہاڑ کی قیمت بھی زیادہ, کسی پہاڑ سے نمک, کسی سے کوئلہ, کسی سے سونا, کسی سے چاندی, کسی سے عقیق, کسی سے فیروزہ, اسی مٹی کی ارتقائی شکل ہے نا. تو جو ترقی کرنا جانتا ہے, حیثیت کو تبدیل کرنا جانتا ہے, کیفیت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ ارتقا کے مرحلے میں چلا جاتا ہے, یعنی اگلے مرحلے میں, اگلے مرحلے میں. یہ سبزہ ارتقائی شکل ہے زمین کی, جمادات کی, یہ نباتات جو ہیں جمادات کی ارتقائی شکل, اور نباتات کی ارتقائی شکل ہے حیوانات. بھائی حیوانات کھا رہے ہیں نا, جب کھائیں گے تو دودھ دیں گے, جب کھائیں گے تو صحت مند ہوں گے. انسان تو بھی فائدہ پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے, سب چیزیں مل کر حضرت انسان تو فائدہ پہنچا رہی ہیں. اللہ نور السماوات والارض, ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے, کار فرما. عالم محضر خداست, یہ عالم کیا ہے, اللہ کے حضور کی جگہ ہے, محضر خدا, یعنی ہر شے میں اللہ کا جلوہ ہے. جب دیکھنا چاہو, تلاش کرنا چاہو, مصائب میں بھی اللہ کا جلوہ ہے, خوشی میں بھی اللہ کا جلوہ ہے, مصیبت میں بھی اللہ کا جلوہ ہے, اچھے حالات میں بھی اللہ کا جلوہ ہے. کوئی ہے جو ہر جگہ تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم پکارو, ہے نا, کیفیت لاشعوری طور پہ پکار بیٹھتے ہو نا. بس نور کا معاملہ کیا ہے, لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ نور کی ایک یہ شکل ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی کیا چیز, ایک نور اور ایک کتاب. اب یہ نور کیا ہے, نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی. اب مجھے اپنے جد محترم عالم کے پہلے سے کر کے نہیں آیا تھا, علامہ نقن صاحب علامہ مقام میرے اجداد میں سے ایک اجداد ہے, بہرحال میں تو ایسے ہی طالب علم معمولی تھا. یہ بڑا چڑھا کہ ہمارے دوست احباب پتہ نہیں کیا کیا تعارف میں لگاتے رہتے ہیں, میں بھی سنتا رہتا ہوں خاموشی سے, جہاں موقع ملتا ہے منع کر دیتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ سب نہ کیا کرو میرے ساتھ, مجھے ایک طالب علم ہوں, طالب علم ہی رہنے تو اسی میں فائدہ ہے. تو نقن صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے, اس پر ایک جملہ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ وہی تاکہ ثواب ہو جائے گا نا, شریک ہو گئے وہ بزرگ, بزرگوں کی ارواح, بزرگ علماء کی ارواح شریک ہو گئی, دعا دیتے ہیں وہ لوگ, ان کو یاد رکھا جائے. तो चलिए वो उनका आपको नुक्ता पेश कर देता हूँ, वरना लोग यहाँ सारे बुजुर्ग उलमा के नुक्ते पढ़ रहे होते हैं अपने नाम से सारे, ये खयानत होती है। क्या है ये? इल्मी खयानत। अगर किसी बुजुर्ग आलिम का नुक्ता पढ़े तो इसमें कोई ऐब थोड़ी है, तो मेरी शान थोड़ी घट रही है, मेरी शान तो बढ़ रही है। हाँ, खुदा का शुक्र है मैंने पढ़ा है उन उलमा को, जभी तो आपके सामने बयान कर रहा हूँ भाई, तो इसमें शान नहीं घटती, इसमें इज्जत है, अल्लाह ने इज्जत रखी, जिसका नुक्ता है उसी के नाम से बयान कर दो। तो नूर और किताब के बारे में फरमाते हैं कि भाई आने का जिक्र आया कि नूर और किताब आपकी तरफ भेज दी गई, वापस बुलाने का जिक्र आया या ये जिक्र आया कि एक चीज रह गई, एक चीज वापस बुला ली, कि नूर और किताब भेजा गया, किताब कयामत तक के लिए है कि नहीं है ना? अब कोई ऐसी आए थे कि रसूल जब आप गए तो नूर चला गया किताब रह गई, कहीं है कोई ऐसी आयत? नहीं है ना। तो जब तक किताब है, जब तक किताब है तो नूर है कि नहीं? या तो कोई आयत लाओ कि जो आयत ये कहे कि रसूल गए तो नूर भी साथ में चला गया। नहीं, ये आयत तो है कि किताब और नूर, और किताब आपके पास भेजी, नूर व किताब मुबीन, नूर भी भेजा और किताब भी, एक मकाम पे नहीं कई मकाम आप पे है कि नूर आया, नूर आया। तो जब रसूल चले गए तो कोई आयत है कि जब रसूल गए तो नूर भी गया? नहीं गया ना। तो किताब और नूर साथ आए, तो जब किताब और नूर आए हैं तो जब तक किताब है नूर है या नहीं है? यानी वो नूर जिसकी रोशनी में तुम किताब पढ़ सको, अंधेरे में तो नहीं पढ़ सकते ना, तारीकी कर दो क्या पढ़ोगे यहाँ? इसको पढ़ने के लिए, किताब का लेप पढ़ने के लिए नूर चाहिए या नहीं चाहिए? तो जैसी किताब होगी वैसा नूर होगा। तब कयामत तक के लिए अगर किताब आई है हिदायत बनकर, तो नूर का सफर भी कयामत तक जारी रहेगा। इसलिए मोहम्मद भी नूर, अली भी नूर, फातिमा भी नूर, और वो आखिरी आने वाले तक ये नूर का सफर जारी है। ये वो नूर। अब्द की आखिरी मंजिल है, अब्द की आखिरी मंजिल बंदगी है, क्योंकि आप गवाही देते हैं वाशद अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु। इसीलिए मैंने कहा गलत फहमी दूर करता चला जाऊं आपकी, पहले बंदा है बाद में रसूल है, लेकिन ये बंदगी की किस मंजिल पर है? बंदगी की इस मंजिल पर है, इस पर हमने पूरा अशरा पढ़ा है कभी, बस एक जुमला आपको पेश करने जा रहे हैं ताकि मतलब मशकूक ना रह जाए ना, हम कोई मशकूक बात नहीं छोड़ना चाहते। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिहि, इतने अलकाबात हैं रसूल के कुरान में, ताहा, यासीन, मुदस्सिर, मुजम्मिल, अय्युहन नबी, अय्युहर रसूल, खातिमुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया, इतने सारे यासीन सारा सारे हैं नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जब सबसे बड़ा मनसब दिया, मेराज कराई, तो ना ताहा कहा, ना यासीन कहा, ना मुदस्सिर कहा, ना मुजम्मिल कहा, ना खातिमुल मुरसलीन कहा, ना या अय्युहन नबी कहा, ना या अय्युहर रसूल कहा, कोई मनसब नहीं। क्या कहा? सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि, बाबरकत है वो जात, पाक पाकीज़ा है वो जात, मुनज़्ज़ा है वो जात, जिसने रातों रात अपने बंदे को सैर कराई। मेराज किसे है? बंदगी को मेराज है। अब समझ में आ गया कि बंदगी की मेराज है, लिहाजा ये नूर अलग माना रखता है, यानी वो नूर से मुराद वो रोशनी जहां शायबा तक ना हो। ये नूर नूरे इस्मत, नूर क्या है? ये नूर है नूरे इस्मत, कि जहां शायबा भी गलत चीज का, गलत बात का, गलत फेल का, क्योंकि अगर मासूम में, बड़ी माजरत के साथ एक मतलब को समझाना चाह रहा हूं, कोशिश करता हूं आसानी से पहुंच जाए आप तक मतलब, कि देखिए अगर मासूम किसी बुराई को जानता ही नहीं तो फिर कमाल तो नहीं हुआ ना। ये तो कल मैंने अर्ज किया, तो मलाइका की सिफत है, मलाइका ऐब जानती नहीं, मलाइका को जिस काम पे खल्क किया वो काम किए जा रहे, उन्हें क्या मालूम? चोरी, गुनाह, जितने भी गुनाह हैं, कबीरा सगीरा जो भी हैं, मलाइका तो नहीं जानते ना, जिस काम के लिए जो मलक खल्क किया वो काम करता है, वो मासूम है। तो अगर ऐसा है अइम्मा ताहिरीन और अंबिया के साथ, फिर तो कोई कमाल नहीं हुआ। मासूम क्यों है? ये क्यों मासूम है? कि जिस जो नूर इनके साथ है ना, जो नूर इनके साथ है, उस नूर के जरिए से मासूम हर चीज के फेल के हुस्न को भी जानता है, उसको कुभ को भी जानता है, यानी हिकमत को जानता है मासूम। अल्लाह ने ये हिकमत दी, ऐसा नहीं कि वो माज़ अल्लाह मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कोई गलत लफ्ज़ मेरे ज़बान से अदा हो जाए। मासूम के इल्म है सब कुछ, लेकिन ये कुदरत है मासूम के पास। अच्छा मुझे बताइए, क्या मासूम के हाथ में ये ताकत नहीं कि वो लश्कर को पलट के रख दे? लेकिन ऐसा तो नहीं किया किसी इमाम ने। मोजज़े की ताकत है ना, इसीलिए अल्लाह ने इनको ये मनसब दिया, अजमत दी कि और लोगों के पास थोड़ा सा जाहिरी इख्तदार आया, आले रसूल के हक छीन के बैठ गए। ताकत की बुनियाद पे ना ऐसे ही हुआ, ताकत की बुनियाद पे सब ले लिया, छीन लिया। लेकिन इसीलिए इनको इमाम बनाया, हादी बनाया, रहनुमा बनाया कि इतना इख्तियार रखने के बावजूद मोजज़े की कुव्वत को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया कहीं। हाँ, इमामत के सबूत के लिए इस्तेमाल जरूर किया कि हम इमाम हैं, हम नबी हैं, हम रसूल हैं, वरना किसकी मजाल थी कि करबला का वाकया कर देता, हो जाता। इमाम के पास इख्तियार है ना, इसलिए अल्लाह ने यह मनसब दिया। ये वो नूर हिदायत, ये वो नूर इल्म है जो इन हस्तियों के साथ साथ है, जिसकी बिना पे इनको कहा गया कि मैंने अपनी अजमत के नूर से इस फातिमा को खल्क किया। अब सुनिए, मकसद खिलकत मैंने कलर्स किया था ना, हर हस्ती के लिए अलग 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 मकामात और मनसब हैं। 10 मिनट ले लूं आपके, ज्यादा कोई हरज तो नहीं है? अरे भैया, 3 ही तो मजलिस हैं, अब कल जिंदा रहे तो 3री हो जाएगी, तो थोड़ा सा मतलब बयान करने को। अल्लाह वो तबीयत जो है ना, तबीयत में बुखल नहीं है, कंजूसी नहीं है, मैं क्या करूं? मैं चाहता हूँ मतलब दे जाऊँ आपको ना, बात मुकम्मल हो जाए इसी हदीस की रोशनी में कि ये क्यों है ये अजमत। हर मासूम अपने जद्दे ताहिरा की अजमत क्यों बयान कर रहा है, क्यों बयान कर रहा इस अजमत को हर मासूम? सुनिए, हुज्जत बालिगा पे बात हो रही है ना, अल्लाह की हुज्जत बालिगा आइए। मुबाहिला सुनते चले आ रहे हैं, हम भी सुनते चले आ रहे हैं। 2-4 लोगों जो वहां की मजलिस में थे, आखिरी मजलिस में, उन तक तो बात पहुंची होगी, आप तक भी बात पहुंचा दें कि मुबाहिला का एक और गोशा कौन सा है, जिस गोशे पे मैं नहीं कहता, दावा नहीं करेंगे किसी ने कभी बात नहीं की होगी, लेकिन इस नाचीज ने ये मतलब बड़ी मेहनत से हासिल किया, निकाला। यूं समझ लीजिए कि काफ़ी अरसे की मेहनत शाक्का के नतीजे में अल्लाह ने मुझे ये तोहफा अता किया, क्योंकि समझ में एक बात आ नहीं रही थी तो उसको समझने में बहुत वक्त लगा, मगर अब पेश कर रहा हूं मतलब आपके सामने। फमन हाथ जगा फी है मिन बाद मा जाका मिन अल इल्म फकुल तआलु नदु अबना व अबनाकुम व निसान व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन। अक्सर जो मतलब बयान किया जाता है ना, वो फकुल तआलु से शुरू करते हैं पढ़ने वाले, और फिर कहा कि बस कहा लाओ तुम अपने औरतों को, लाओ तुम अपने बेटों को, लाओ अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को, तुम अपने नफ्सों को, यही है ना? नहीं, इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो जो आयत का पहला जुमला जिसको अक्सर मकाम आते सबको, मैं नहीं कह रहा उस पर बहस नहीं किया थी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। फमन हाज्जा काफी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, ये क्या है? अब ये हुज्जत करे आपसे कोई, लड़े बहस करे, अब भी अगर कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, मुनाकशा करता है, जबकि इल्म आ गया, दलीलें आ गई, तो बस अब गुफ्तगू का दरवाजा बंद। ऐसे ही हुआ है ना मोबाइल में, क्या हुआ भाई? क्यों हुआ था मोबाइल भाई? 40 दिन बहस मुबाइसा हुआ, किससे हुआ? बनी नजरान के ईसाइयों से। बनी नजरान के ईसाइयों ने किससे मुबाहिसा किया? किससे किया? रसूल से किया। रसूल से ज्यादा बड़ा कोई आलिम है कायनात में? अल्लाह के बाद रहमतुल आलमीन है ना। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे इससे बहस नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि अली ने फरमाया है और किसी से नहीं, मेरे मौला ने कहा है कि रसूल ने इल्म मुझे ऐसे भराया जैसे परिंदा अपने बच्चे को गिजा भराता। या तो है ना ऐसे ही, ऐसे ही है। तो बताइए, रसूल से बड़ा आलमीन में कोई आलिम है? नहीं है ना, उससे ज्यादा कोई दलीलें रखता है, नहीं है ना ऐसा दलील रखने वाला, लेकिन फिर भी 40 दिन तक रसूल की बात को नहीं माना, नहीं माना ना, कौन सी दलील होगी जो रसूल ने नहीं दी, मगर नहीं माने, नहीं माने जो पहले अर्ज कर चुका, जिसको नहीं मानना कोई दलील दे दो नहीं मानेगा। तो अब अल्लाह का भी हुक्म आ गया कि बस गुफ्तगु का दरवाजा बंद, छोड़िए अब इनको, अब इनसे कोई बात नहीं करनी, यानी सारी दलीलें हो गई ना, अब कोई दलील नहीं दीजिए, अब बातचीत बंद, अब इनको मैदान में बुलाइए, अब इनको मुबाहले की दावत दीजिए। अब यही चीज रह गई, क्या वो एक दूसरे के ऊपर मुबाहला करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो झूठा उसमें खुदा की लानत, यही हुआ ना, मुबाहला में पड़ी भी रहा, वो तो आप सुनते रहेंगे भी, सारा साल सुनते हैं। मैं कुछ और पेश करना चाह रहा हूं आपके सामने में, सारी दलीलें खत्म, खत्म से मुराद ये कि जितनी दे सकते थे रसूल ने दे दी, अल्लाह ने रोक दिया, ये नहीं कि रसूल के पास दलीलें खत्म हो गई होंगी, लेकिन अल्लाह ने रोक दिया कि अब ये कुछ नहीं मानेंगे, इतनी दलीलें दे दी बस अब खत्म हो गई बात, ऐसे ही हुआ ना। अच्छा मुबाहला हुआ, तफसीलात को छोड़ दीजिए, खुलासा इतना है कि 5 हस्तियां आई बस, ठीक है ना, तफसील में जाएं तो फिर पूरी मजलिस उसके लिए चाहिए होगी, वो आप सुन ही लेते हैं, सारा साल सुनते हैं। 5 हस्तियां आई, कौन? मोहम्मद अली हसन हुसैन, और दरमियान में एक हस्ती फातिमा, दरमियान में चादर में पोशीद, आगे रिसालत पीछे इमामत, ऐसे ही है ना, दायरा है रिसालत इमामत विलायत का, जिसके दरमियान में फातिमा है। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि मुबाहसा कहां हुआ? मस्जिद नबवी में हुआ था भाई, वहीं ठहराया गया था इनको, वहीं ठहराया गया था, वहीं गुफ्तगू हुई, वहीं बहस मुबाहसा हुआ, और रोज सुबह सब मदीने वाले आ जाते थे शौक में कि अब देखिए आज क्या होगा, आज क्या गुफ्तगू होगी, ऐसी था ना, कोई पाबंदी तो नहीं थी, कोई खुफिया मुजाकिरात थोड़ी हो रहे थे, मस्जिद नबी में हो रहे थे, तो सब आ रहे थे ना। और ये बनी नजरान की ईसाई किससे बहस कर रहे थे? अल्लाह के रसूल से। पर्दे में तो नहीं कर रहे थे, आमने सामने कर रहे थे ना, सब आते थे, तो मौला आते थे नहीं आते थे भाई? मौला भी तो आते थे मस्जिद नबी में, वही तो घर था। हसन हुसैन आते थे नहीं आते थे? खेलते खेलते भाई, बच्चे तो थे, वो तो वैसे ही आ जाते थे, जानू पे बैठ जाते थे, सब आते थे ना। तो ये बनी नजरान के ईसाइयों ने सबको देखा था कि नहीं देखा था? मोहम्मद को देखा, अली को देखा, हसन को देखा, हुसैन को देखा, पांचवी हस्ती को तो उस दिन भी नहीं देखा, मुबाहले वाले दिन भी कहां देखा, दरमियान में है ना। फिर आखिर हुआ क्या? क्या हुआ कि जब ये 5 हस्तियां मुबाहले के लिए आई तो चिल्ला उठा आकिब बनी नजरान का सरदार कि उन चेहरों को देख रहा हूं कि अगर पहाड़ों को इशारा करेंगे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, मुबाहला ना करना। यही तो मेरा सवाल है कि कौन से चेहरे देख रहा है? रोज तो देख रहा था, वही चेहरे थे। ये है वो हुज्जत बालिगा। फातिमा क्या है, यानी इनमें से हर एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। अब यही से इंशाल्लाह कर शुरू करेंगे, इसी मतलब को आगे लेकर चलना है हमें। अब तो जिक्र शुरू हुआ है, अभी इस पर दलीलें देंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही कल की मजलिस में। लेकिन वही दरख्वास्त है कि सब आखिर में आते, आदत पड़ी हुई कराची वालों को क्या भाई अब ख़त्म होने वाली है अब चलो। अरे भाई मैं शुरू में भी काम की ही बातें कर रहा होता हूँ, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बारह इंशाल्लाह यही याद रखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो चलेगा सिलसिला। और अफसोस इस बात का है मुझे कि बस तीन ही मजलिस हैं इसके बाद, क्योंकि दूसरे का पढ़ना है अब वहाँ पे बस फातिमा, फिर ये सिलसिला यहाँ से फिर मज़ीद आगे बढ़ाएंगे वहाँ पे। लेकिन वो इतनी दूर है गए हवाले वहाँ नहीं जा सकते, मुश्किल ये है मेरे लिए। लेकिन खैर यहाँ से शुरू करेंगे बात। तो अजीज़ो याद रखो कि 14 मासूम अगर भेजे हैं, 12 इमाम अगर भेजे हैं, तो ऐसे थोड़ी कि माज़ल्ला की गिनती पूरी कर दी अल्लाह ने। अरे भाई हर एक का कोई मकसद है ना, हर एक का मैदान अलग है, हर एक को अलग कारनामा अंजाम देना है। लेकिन हैं सब के सब अल्लाह के रसूल ने मोहर लगा दी, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखरना मोहम्मद, कुल्लना मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अगर हम में से एक कामल सब कामल है। इसीलिए हमारे यहाँ सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत मासूमीन है। जो मासूम एक करेगा वही सबका हुक्म है, वही सबके लिए, वही सबके लिए सीरत है, ऐसा ही है ना। बस इसलिए भी फातिमा फातिमा है, माजरत के साथ फिर आपसे माफ़ी चाह रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ। एक मकाम ऐसा आता है कि मशीयत इलाही, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, मशीयत इलाही। इमाम मजबूर नहीं होता याद रखिए, मगर मशीयत इलाही, मशीयत इलाही का तकाजा एक मकाम पर यह है कि अली एहतिजाज नहीं कर सकते, अली तलवार नहीं निकाल सकते, मजबूर नहीं है अली, समझ गए मेरी बात को, मगर मशीयत इलाही, मसलहत इलाही के तहत मंजिल ऐसी आ गई है कि अली कुछ भी बोले इल्जाम लगा दिया जाता है कि माज़ अल्लाह ये तो इक्तदार के लिए। बस अब मैं मौलाए आरिफान के खिदमत में ये गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम अदना सा गुलाम एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि मौला आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जुमला अदा कर रहा हूँ, अल्लाह गवाह है कि आप खुश हो जाएं कि जो मैं ये जुमले अदा कर रहा हूँ इस पर आप खुश हो जाएं कि मैं आपकी हमसर के लिए जुमला अदा कर रहा हूँ कि जहाँ मशीयत ने अली को घर से बाहर निकलने से रोका वहां से फातिमा ने अपने जिहाद का आगाज किया, वहां से फातिमा का जिहाद शुरू हुआ। यही तो समझे थे लोग, अरे रसूल की बेटी घर में रहने वाली खातून ये क्या मुकदमा लड़ेगी अपना, ये इतने मर्दों के बीच में आके कहां से बात करेगी। अली की हमसर हसनैन की माँ रसूल की बेटी ने बताया कि हम सब इल्मे लदुन्नी के हामिल हैं, आई है और किस शान से आई है शहजादी अपना हक लेने के लिए, मिले या ना मिले एहतिजाज तो रिकॉर्ड कराया ना शहजादी ने, किसकी फिक्र ना करना मिले या ना मिले, कयामत तक हक रिकॉर्ड में रखो कि तुमने एहतिजाज किया था, अपना हक तलब किया था। ये सिखाया शहजादी कौन ने कि एहतिजाज जरूर करो अपने हक के लिए, मिले या ना मिले, नहीं मिला शहजादी, किस शान से गई थी, हाशमी खवातीन ने अपने जुलू में झुरमुट में लिया था, और बड़ी सी चादर फैली हुई चादर ताकि किसी भी उज्व की कोई झलक भी जाहिर ना हो, इतनी बड़ी चादर थी फैली हुई चादर, और हाशमी खवातीन और कुछ कनीज़ें और इसी तरह जनाब उम्मुल फजल यानी जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा वो भी साथ हैं, ये सब साथ हैं, और कुछ ने उस चादर का दूर से तामन भी थामा हुआ है। और ये भी बता दूं कि बच्चियों को साथ लेकर आई, बच्चियों को ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को साथ लेकर आई, क्यों लेकर आई, ताकि जब तकरीर करे माँ खुतबा दे माँ तो ये बच्चियां गौर से देखें माँ को और माँ के लहजे को ललकार को दिलो दिमाग में उतार, इसलिए लेकर आइए दरबार में, मेरी बच्चियों कल तुम्हें भी खुतबे देने पड़ेंगे, तो सीख लो अपने हक के लिए कैसे खुतबा दिया जाता है, कैसे तकरीर की जाती है। ये अलग बात है कि मासूम कौनैन, जब आप दरबार में आई तो ऐसा तो हुआ कि कम अज कम दरमियान में पर्दा हाइल कर दिया गया, ऐसा तो हुआ कि जब आप दरबार में आई तो एहतराम में लोग खड़े हो गए। ये अलग बात है कि जब आपकी बच्चियां बाजारों और दरबारों में जाएंगी तो मंजर कुछ और होगा। नहीं मिला हक, पिछली मजालिस में पढ़ चुका हूं खुतबे के बारे में, जहां मैंने पढ़ी थी, नहीं मिला हक, शहजादी वापस आ गई, कोई मसला नहीं, मगर रिकॉर्ड तो हो गया एहतजाज, आवाज उठाओ अपने हक के लिए, मिले या ना मिले, ताकि आने वालों को सबक मिलता रहे कि दबना मत बातिल से, बातिल के मुकाबले में आवाज बुलंद करते रहना, बुलंद करते रहना। वो दुख्तर रसूल जिसके लिए अल्लाह का रसूल फरमा रहा है, मन अजाहा फकत अजानी व मन अजानी फकत अजल्लाह, जिसने मेरी बेटी फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। जब ये वाकया हो गया, जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया, मोहसिन शहीद हो गया, पूरा वाकया हो गया। उसके बाद मदीने में चेवी गोइयां शुरू, घर घर में, क्योंकि यह हदीस जबा जदे आम थी, आज भी सेहा में मौजूद है, लोगों में यह बात फैलने लगी कि ये हुआ है दुख्तर रसूल के साथ, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मन अगजबा फकत अगजबनी व मन अगजबनी फकत अगजबल्लाह, जिससे मेरी बच्ची नाराज उससे मैं नाराज, जिससे मैं नाराज उससे अल्लाह नाराज, जिस पे मेरी बच्ची गजबनाक मैं गजबनाक, जिस पे मैं गजबनाक उस पे अल्लाह गजबनाक, ऐसे ही है ना। अब जब ये बातें फैल गई तो एहसास हुआ कुछ लोगों को, बार बार अली से कहते हैं कि हमें दुख्तर रसूल से मिलना है, मिलना है। अली बार बार पैगाम लाते हैं, फातिमा बार बार मना कर देती है कि मुझे इनसे नहीं मिलना। एक दिन जब अली दाखिल हुए, बहुत अफसरदा लहजा है, चेहरा है, तड़प उठती जहराए मर्जिया, या अबुल हसन, क्या मदीने वालों ने फिर कोई नई अजियत पहुंचाई? सर झुका के बैठे कि दुख्तर रसूल में कैसे बयान करूं आपसे, तो बताइए क्या बात हुई। दुख्तर रसूल ये बार बार मुझसे कहते हैं आपसे मुलाकात का आप मना कर देती हैं। अब मदीने में ये प्रोपेगेंडा आम कर दिया गया है कि दुख्तर रसूल तो मिलना चाहती हैं, अली मिलने नहीं देते। ये है लोग, ये है दुनिया, ये खाया हुआ भूसा, ये है बकरी की, ये एक हैवान की छींक से बहता हुआ वो मादा जो मौला ने करा दिया, ये है दुनिया। कहते हैं कि अली मिलने नहीं देते, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरे मदीने में। बड़ी हसरत से दुख्तर रसूल ने अली के चेहरे को देखा होगा, या अली आपकी खातिर इजाजत देती हूँ एक बार आ जाए, आपकी खातिर जाइए मेरा पैगाम लेके आ जाए। आ गए, पर्दा हाइल है, रो रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, उससे गलती हो गई, और आए इसीलिए थे कि रहमतुल्लिल आलमीन की साहबजादी है माफ़ कर देंगे, इसीलिए तो आए थे कि रहमतुल्लिल आलमीन की साहबजादी है माफ़ कर दी, कह देंगे लोगों को कि माफ़ कर दिया। और आम तासुर भी यही है, बल्कि एतराज़ करने वाले एतराज़ भी करते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि नहीं माफ़ किया था, अरे वो रसूल की बेटी रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी, वो कैसे माफ़ नहीं करेगी, बिल्कुल माफ़ किया था, आप लोग गलत कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना कि क्यों क्यों माफ़ नहीं किया जहरा ने, वो बताने जा रहा हूँ आपको। आए बैठे, माफ़ी मांगी, शहजादी ने कहा पहले मेरी एक बात की तस्दीक करो, उसके बाद मैं अपने बाबा का कौल तुम्हारे सामने दोहरा क्यों बताऊँ, बताओ क्या मेरे बाबा ने फरमाया फातिमा तो बस तुम मिलनी फातिमा मेरा टुकड़ा है, जी हम तस्दीक करते हैं। अच्छा बताओ क्या मेरे बाबा ने फरमाया कि मन अजाहा फकत अजानी ومن اذاني فقد اذى الله من اغضبها فقد اغضبني ومن اغضبني فقد اغضب الله. فرمایا کہ جس پر فاطمہ غضبناک اس پر میں غضبناک, جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی, جس سے میں ناراض, جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض, جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض. تصدیق کی کہ بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں, ہم نے سنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں. جب ہی تصدیق لے لی تب زہرا نے ہاتھ اٹھائے, بار الہ گواہ رہنا میں ان سے ناراض جا رہے ہیں, چلے گئے روتے ہوئے چلے گئے. کیوں معاف نہیں کیا؟ رحمت للعالمین کی صاحبزادی نے کیوں معاف نہیں کیا؟ جو بھی تھے ان کو, میں تو بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں, مجھے سب کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے, احساسات کا, بس آپ تک پہنچ رہا ہے پیغام کافی ہے اتنا, جو بھی رہے ہوں ایکس وائی زیڈ. کیوں معاف نہیں کیا؟ فاطمہ زہرا نے ان کو دروازہ جلایا تھا نا, فاطمہ کا اگر دروازہ جلانے کی بات ہوتی نا صرف شہزادی معاف کر دیتی, یہ میرا یقین ہے, شہزادی معاف کر دیتی اگر خالی دروازہ جلانے کی بات ہوتی. پشت زخمی کی تھی نا, پہلو زخمی ہوا تھا, شہزادی معاف کر دیتی, اپنے اوپر ظلم ہوا تھا نا, شہزادی معاف کر دیتی, حتیٰ کہ محسن کی شہادت بھی معاف کر دیتی. اچھا جاؤ معاف کر دیا, نہیں معاف کیا نا, کیوں معاف نہیں کیا؟ عزاداروں اس لیے زہرا نے معاف نہیں کیا کہ تم نے میرا گھر جلا کر آج بنیاد رکھ دی, کل میری بچیوں کے خیمے جلائے جائیں. تم نے ہمت دے دی, ہمت کہ لوگ کہیں گے جب رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیمے کا کیوں نہیں جلایا جا سکتا. تم نے ہمت دے دی میرے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا کر کہ پھر زینب ام کلثوم اور سکینہ کو تازیانے کیوں نہیں مارے جا سکتے, پھر سکینہ کے رخساروں پر تماچے کیوں نہیں مارے جا سکتے. جب رحم مادر مبارک فاطمہ زہرا میں محسن کو شہید کیا جا سکتا ہے تو کربلا میں ششماہ علی اصغر کو تیر کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ کربلا میں جرتیں دے دی تم نے میرے گھر کو, قیامت تک میرے چاہنے والوں کو, میری اولادوں کے قتل و غارت گری کا تم نے دروازہ کھول دیا. اگر ظلم صرف مجھ سے میری ذات تک محدود رہتا شاید معاف کر دیتی فاطمہ زہرا, لیکن جانتی ہے کہ یہ بنیاد رکھ دی گئی قیامت تک میرے حسین کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے کے لیے. کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی رسول کے بعد, کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اسی لیے تو ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. کیا اس دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ کو چین آ گیا؟ کیا چین مل گیا؟ روایتیں سنتے نہیں ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا؟ کیا روایتیں سنتے نہیں ہیں کہ شب عاشور ثانیہ زہرا نے فضا کے ذریعے سے بلایا ماں جائے گو حسین کو, اور جب حسین بہن کے خیمے میں آئے تو بہن فرماتی ہے بھیا سرے شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز. کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرماتے بہن پہچانا نہیں, ارے یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے, ہم نے مدینہ چھوڑا ماں نے مزار چھوڑ دیا. اور کہاں کہاں سے پڑھوں آپ کے لیے, اسی شب عاشور میں حسین اپنے انصار کو لے گئے, ہر ایک کو اس کا مقام شہادت دکھانے کے بعد فرماتے ہیں ایک نشیب کی طرف بڑھتے ہوئے کہ آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں. ایسا ہی ہے نا, اپنا مقام شہادت دکھاؤں. اور کچھ قدم چلے تھے واپس مڑے اور فرماتے واپس چلو, جلدی کرو واپس چلو. خیمہ گاہ میں پہنچے, انصار نے دست بستہ عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے, اس نشیب میں ایسا کیا دیکھا؟ میرا مولا فرماتا ہے تمہیں کیسے بتاؤں, میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا, ارے کل جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا وہاں گئے, اس جگہ کو صاف کر رہی ہے, میں نے وہ سخت لفظ نہیں پڑھا جو روایت میں موجود ہے مگر میں نے نہیں پڑھا، میری ہمت نہیں ہے وہ لفظ ادا کرنے کی، اور میں کہاں سے پڑھوں آپ کے سامنے؟ ارے یاد ہے سکینہ بچھڑ گئی تھی شام کی راہوں میں، قافلے سے بچھڑ گئی تھی یا نہیں؟ ناقے سے گر گئی تھی یا نہیں؟ سر حسین جس نیزے پر نصب تھا وہ نیزہ ریت میں گڑا تھا، اس طرح قافلہ روکا گیا تھا، بیبیاں ناقوں سے اتری تھی، ہاتھ کھولے گئے تھے، مخالف شبد میں زینب آوازیں دیتی جا رہی تھی سکینہ سکینہ، سب بیبیاں پھیل گئی تھی صحرا میں، کچھ دور چلی تھی زینب، بچی کے رونے کی آواز آئی کانوں میں، آواز کے شبد میں بڑھی، کیا دیکھا؟ کوئی بیوی سیاہ پوش بچی کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، تسلی دے رہی ہے میری بچی نہ رو نہ رو، بس ابھی تیری ماں بہنیں پھوپھیاں پہنچ جائیں گی، تجھے لے جائیں گی۔ زینب نے جو ہی سکینہ کو دیکھا آواز دی میری بچی سکینہ میں آ گئی تیری پھوپھی زینب، سکینہ دوڑی لپٹ گئی پھوپھی سے، پھوپھی نے گلے سے لگا لیا سکینہ کو، کچھ دیر کے بعد اس بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا بیوی آپ نے بڑا احسان کیا، ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں، اس عالم غربت میں کیسے شکریہ ادا کریں آپ کا، کیا آپ نے اس یتیمہ کو سہارا دیا، اپنی آغوش میں پکڑ دی۔ بس اتنا کہا تھا زینب نے، اس بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا زینب ارے کس کا شکریہ ادا کرتی ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیری ماں زہرا ہوں، تیرے پیچھے پیچھے کر بس۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبين ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے زمان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو بیمار ہیں زخمی ہیں خاص طور پر جیسا میں نے آپ کو بتایا مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہمارے ساتھی حجت الاسلام والمسلمین مولانا تصور حسین جوادی اور ان کی اہلیہ پر حملہ ہوا ہے، سخت زخمی ہیں، دعا کریں پروردگار عالم انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی یہ دھماکوں کے جو مجروحین ہیں زخمی ہیں جو کل سے ہو رہے ہیں، وہ سب انسان کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، بار الہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو سہولت کاروں کو ذلیل و رسوا کر دے، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما دے، بار الہ جو دشمنان دین پاکستان اسلام اور مومنین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کی سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ یاد رکھیے یہ پولیس کے سپاہی ہوں یا رینجرز کے سپاہی ہوں یا فوج کے سپاہی ہوں، ہم پر کچھ بھی ظلم ہوا ہو لیکن یاد رکھیے مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کی بھی جانیں خطرے میں ہیں، یہ بھی روزانہ مارے جا رہے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، بار الہ ان کو بھی دہشت گردوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے اداروں کو صحیح اور غلط دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اتنے ستم اٹھانے کے بعد وہ کون سی قوم ہے جس میں سے آج تک ایک بھی خودکش بمبار نہیں نکلا، وہ کون سی قوم ہے کہ ہزاروں لاشیں اٹھانے کے بعد اس قوم کے کسی فرد نے کوئی بم دھماکے نہیں کیے، کاش ان کو سمجھ میں آ جائے کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، کاش جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا پاکستان میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہوں، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا، اپنے تمام مرحومین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، تمام شہدا کے لیے ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔